ओम शांति। सभी शांतिवन में पधारे भाई बहनों से नम्र अनुरोध है कि डायमंड हॉल में आप सभी का क्लास प्रारंभ होने जा रहा है, तो आप सभी डायमंड हॉल में पहुंच जाए। कहा जाता है फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ तो उसके खुशबू से होती है, और मनुष्य कितना भी बड़ा हो लेकिन उसकी महिमा उसके गुणों से होती है। ऐसे बाबा की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने वाले, बाबा को प्रत्यक्ष करने का दृढ़ संकल्प लेकर दिन रात दानी महादानी वरदानी बन विश्व कल्याण करने वाले हमारे बीच पधारे हमारी सोम प्रभा दीदी जी है, जिन्होंने ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन अर्पित करते समय श्वास संकल्प सेवा में लगाते 50 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। आपने 78 से 81 तक विदेश में भी सेवाएं दी है, मॉरिशियस, सेशल, रेन्यून और दुबई में जाकर के आपने बाबा की सेवाएं दी है। मैसूर से बाबा ने आपको अपना बनाया और सब जगह सेवा करते देश विदेश की। वर्तमान समय आप सोलापुर सब जोन संभाल रहे हैं। इस 50-55 वर्ष की ईश्वरीय सेवा के भीतर आपने 50 सेंटर्स खोले हैं और कहीं हजारों 700-800 तक गीता पाठशालाएं जो है उसका भी आप संचालन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन वो चीज है, उसके लिए कहा जाता, कहते हैं जीवन जीने के लिए साधनों की जरूरत नहीं होती, साधना चाहिए। गले में फूलों के हार नहीं, परंतु ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय दुल्हार और दुआओं के हार चाहिए। और अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए बाबा के साथ दिल की लगन और मगन स्थिति चाहिए। ऐसी मगन स्थिति स्वयं की बनाए चलने वाले फूलों की तरह दीदी जी आप खिलते रहो, सूरज की तरह आप सदा चमकते रहो, और ये सारा ही संगम युग आप महादानी वरदानी विश्व कल्याणी बन महकते रहो, महकते रहो, और सर्व की झोली बाबा के वरदानों से आप भरते रहो। ऐसे आदरणीय सोम प्रभा दीदी जी का हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करती हूँ कि आप हमें इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, वरदानी महादानी विश्व कल्याणी स्थिति द्वारा सेवा। ओम शांति।
ओम शांति। हम सभी पहले 3 बार हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा मिला हुआ विशेष मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। तो जितने भी हम क्लासेस सुने, जितने भी हम दूसरों को ज्ञान सुनाए, सबका मूल मंत्र कौन सा है? ओम शांति का मंत्र है। ओम शांति का जो बाबा ने हमें विशेष मंत्र इसलिए दिया कि हम अपने जीवन में सच्ची शांति क्या है वो समझ करके, उस आत्मिक स्थिति में स्थित हो करके हम उसका अनुभव करें और दूसरों को भी कराए। तो पहले हम बाबा के ऐसे महान तीर्थ स्थान पर पहुंचे हुए हैं, तो हम बाबा के अति प्यारे विशेष महामंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले मैं उच्चारण करूंगी, फिर आप सभी मिलकर के रिपीट करेंगे। ओ शांति, ओ शांति, आज का विषय आप सभी ने अभी तक हमारी प्यारी बहन वंदना बहन जी से सुनी लिए हैं, फिर भी जो विषय है उसको हम एक बार दोहराएंगे। दानी, महादानी, वरदानी और विश्व कल्याणी, ये स्थिति हमें समय की पुकार के अनुसार बनानी ही है। तो वैसे तो हम सभी बाबा के बच्चे, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, जो इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युगी ब्राह्मण जीवन हमें प्रदान किए हैं, तो इस जीवन में हम सभी दानी तो जरूर बन गए हैं। दानी है हम सभी, है दानी, है क्या दान करते हैं, कौन सा दान करते हैं, तो हम सबको पता है। हम सभी हमारे प्यारे प्यारे शिव बाबा के द्वारा हर दिन मुरली महावाक्य सुनते हैं, वो सुनकर हम दूसरों को भी जरूर सुनाते हैं। थोड़ा बहुत प्रमाण में क्यों नहीं हो, कोई न कोई एक शब्द, कोई न कोई एक बात हमारे मुख से जरूर निकलता ही है। चाहे अपने परिवार के बीच में, चाहे अपने स्नेही सहयोगी सहेलियों के बीच में, तो बाबा के कोई ना कोई महावाक्य जरूर निकलता ही है। क्योंकि जो हर दिन हम सुनते आ रहे हैं, तो जो हमारी बुद्धि में वो हर दिन सुनते सुनते विचार सागर मथन चलता आ रहा है, तो जो कुछ बुद्धि में रहता है, मन में रहता है, वो तो मुख से जरूर थोड़ा बहुत निकलता ही है। तो ऐसे हम सभी, चाहे कैसे भी व्यक्ति है, कैसे भी बाबा के बच्चे हैं, सभी दानी तो है ही। ज्ञान का दान हम सब जरूर करते हैं। वैसे देखा जाए तो हम सब पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से, परम पिता परमात्मा के शिव बाबा के महावाक्य सुनकर दिव्य जन्म प्राप्त किए हुए हम सब कौन हैं? हम सब कौन हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, ब्राह्मण बच्चे हैं, शिव बाबा की संतान है, साथ साथ ब्रह्मा बाबा की भी मुख वंशावली, उनके मुख कमल से जन्म प्राप्त किए हुए हम सब ब्राह्मण बच्चे हैं। वास्तव में हम ब्राह्मण केवल पवित्रता को धारण करना अथवा केवल ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना, इतना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, वो भी तो हमारा फाउंडेशन है, इस आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है। मन वचन कर्म से पूरा हमारे जीवन में पवित्रता तो जरूर चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन जरूर चाहिए, व्यतीत करनी चाहिए, परंतु साथ साथ हम ब्रह्मा बाप के बच्चे कौन हैं? ब्रह्माचारी भी है, केवल ब्रह्मचारी ही नहीं, हम ब्रह्माचारी भी है, अर्थात ब्रह्मा बाप जिस प्रकार से आचरण करके हमें एक आदर्श बनकर दिखा करके गए, उस अनुसार हम भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चलने वाले, तो ये अति आवश्यक है। क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कई वैसे ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाले लौकिक में भी कई लोग हैं, तो कई उदाहरण हमारे सामने हैं। तो ऐसे तो हम सुनते आ रहे हैं, हमारे जो देश के लीडर है उनमें से भी कई लोग इस प्रकार के पवित्रता को पालन करते आ रहे हैं, परंतु ब्रह्मा बाप के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता आ रहा है, उन्होंने जो शिव बाबा के महावाक्य धारण करके हमें आचरण में ला करके दिखाए हैं, तो वो हमें फॉलो करना अति आवश्यक है, ब्रह्माचारी बनना अति आवश्यक है। तो हम सब तभी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कहला सकते हैं। तो ऐसे हम सभी बाबा के सच्चे सच्चे ब्राह्मण बच्चे, बाप दादा के कदम पर कदम रख करके चलने वाले, हमारा कर्तव्य है बाबा से प्राप्त किए हुए ज्ञान को अन्य आत्माओं को देना। वैसे तो हम सबको मालूम है, हम सब दान करते ही हैं, तो भाषण कर लेते हैं, और कोर्स करा देते हैं और प्रदर्शनी समझा देते हैं। कोई अनपढ़ भी क्यों नहीं हो, वो लोग भी शिव बाबा का नाम तो जरूर लेते ही हैं। शिव बाबा हमारे पिता है, हम उनके संतान हैं, हमारा बाबा है, तो हमें परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति दे रहे हैं। तो ऐसे दो तीन शब्द तो जरूर सभी दूसरों को सुना ही रहे हैं, सुना भी सकते हैं। परंतु हम सबका विशेष कर्तव्य है, केवल ज्ञान सुनाना नहीं है तो उसको जीवन में धारण करना। जो हम बाबा के महावाक्य रोज सुनते हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करना, धारण करके उस अनुसार प्रैक्टिकल में चलते हुए उन दिव्य गुणों के द्वारा दूसरों की सेवा करना है ना, यानी दिव्य गुणों को धारण करके गुणों का दान करना। जब हम ज्ञान का, धन का दान करते हैं, ज्ञान भी बाबा ने हमको बहुत कुछ दिया है, इसलिए ज्ञान को खजाना भी कहा जाता है, ज्ञान रत्न कहा जाता है, ज्ञान अमृत कहा जाता है। ऐसे ज्ञान संपत्ति को हम प्राप्त किए हुए हैं, परंतु उस ज्ञान को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली ला करके जब गुणों का दान करते हैं तभी हम महादानी कहला सकते हैं। तो इससे सिद्ध होता है केवल हमें दानी नहीं बनना है, हमें महादानी बनना है। महादानी का कर्तव्य है तो मन वचन कर्म से हम गुणों का दान करना। तो गुण, दिव्य गुण जो बाबा ने हम बच्चों को कितना महावाक्यों में हर दिन सिखाते आ रहे हैं, आज भी हमने मुरली में सुना, एकाग्रता अति आवश्यक है। तो वैसे एकाग्रता भी एक हमारा दिव्य गुण है, उसी प्रकार से सहनशीलता है और गंभीरता है, नम्रता है, कई ऐसे दिव्य गुण हैं जो हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने भी प्रैक्टिकल में करके दिखाए। बाबा के जो हम जीवन कहानी सुनते हैं उनका जो वर्णन किया जाता है तो सुनते हुए भी हमको कितना अच्छा अनुभव होता है, भाव विभोर हो जाते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं उनके जैसे बने, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इसीलिए दानी के साथ साथ हमें महादानी भी जरूर बनना है। जो दानी होते हैं वे सत्युग में जरूर आएंगे, परंतु कैसे आएंगे, किस पद को प्राप्त करके आएंगे, प्रजा में आएंगे या और कोई प्रकार से वहां जन्म लेंगे, वो अलग बात है। केवल दानी बनने से भले हम सत्युग में प्रजा तक तो पहुंच जाएंगे, परंतु हमारा केवल इतना ही लक्ष्य नहीं है। तो हम सबका लक्ष्य क्या है, हम सबका लक्ष्य क्या है, कम से कम 108 माला के मणके में आना। भले हम 108 माला के मणके में हानि जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं, वो तो अंत में तो मालूम पड़ ही जाएगा। परंतु 16108 की भी माला ने बनाया है, बाबा ने बताया है 16108 मणकों की माला भी है। तो वैसे 9 लाख के अंदर तो प्रजा में आ ही जाएंगे, परंतु हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 16108 मणकों की माला में तो जरूर हम आए। परंतु इतना दूर का लक्ष्य रखने के बदले हमारा लक्ष्य और भी आगे बढ़े, जो हम महादानी के साथ साथ हम वरदानी भी बने, तो वो है 108 माला के मणके में आने का पुरुषार्थ। वरदानी जो बाबा के बच्चे होते हैं, वो केवल दूसरों को वरदान देने तक ही कार्य नहीं करते हैं, दूसरों के द्वारा दुआएं प्राप्त करने का भी कार्य करते हैं। पहले हमको अपने अंदर दुआएं जमा करना होगा। जब हमारे अंदर पहले हम उस प्रकार से पुरुषार्थ करके मन वचन कर्म से वरदानी मुहूर्त बनते हैं, तभी हम दूसरों को भी उस प्रकार के वरदानी मुहूर्त बना सकते हैं। यानी दुआएं हम अपने अंदर जमा करके दूसरों को भी दुआएं देना, वरदान देना, ये हमारा वर्तमान समय की स्थिति होनी चाहिए, स्टेज होनी चाहिए। परंतु उसके लिए पहले अपना पुरुषार्थ तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। कि जैसे आज भी हम मुरली में सुन रहे थे, केवल चढ़ती कला तक नहीं, हमको अभी वर्तमान समय पर कौन सी कला चाहिए? उड़ती कला। जैसे पहले चलना होता है, फिर बाद में धीरे धीरे दौड़ना होता है, फिर धीरे धीरे चढ़ना होता है, फिर आगे चल करके बाबा हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, अभी सिर्फ चढ़ना नहीं है, अभी हम बच्चों को उड़ना है। क्योंकि हम सबको पता है जो उड़ करके पार करता है तो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी पार कर लेता है। कितने ऊंचे पहाड़ों को पार करके हम उस पार चले जाते हैं। यदि हम चलते जाते हैं या चढ़ते जाते हैं तो उसमें तो मेहनत लगती है। तो वर्तमान समय के अनुसार बाबा हम बच्चों को यही ध्यान खिंचवा रहे हैं, हम बच्चों का कर्तव्य है उड़ते जाना, उड़ते चलना, आगे बढ़ते चलना। क्योंकि नीचे जो भी परिस्थितियां आएगी वो हम ऊपर होने के कारण से हमको दिखाई भी नहीं देगी। तो जितना हम ऊपर उड़ते चलते हैं तो उतना हम हरेक विघ्नों को, हरेक परिस्थितियों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। परंतु उसके लिए हमारे जीवन में हम किन बातों को धारण करना अति आवश्यक है? तो एक तो सदैव हम शुभ भावना और शुभ कामना सबके प्रति रखनी चाहिए, चाहे वो हमारे मित्र है या शत्रु है, अच्छे हैं या बुरे हैं, इस प्रकार के भी व्यक्ति हैं, तो सबके प्रति तो हमारी भावना क्या होनी चाहिए? शुभ भावना होनी चाहिए। ज्ञानी है अज्ञानी है, लौकिक अलौकिक जो भी है कोई भी है, सबके प्रति शुभ भावना हो और शुभ कामना हो। परंतु सबके प्रति शुभ भावना होना इतना आसान नहीं है, तो 63 जन्मों की जो आदत है वो अचानक आ जाती है। तो जब हम किसी को देखते हैं तो बहुत करके क्या हो जाता है, गुण देखते हैं, हम तुरंत देखते हैं, भले हम यहां बैठे हैं अभी मधुबन में हां बोल देंगे, हाँ यहां पर तो चलो बाबा के बच्चे उसी वातावरण में हैं, एक दूसरे की अच्छाई हम देख रहे हैं, हाँ गुणी देखते हैं बोल देंगे। परंतु वास्तव में देखा जाए, यदि हम अपने व्यवहार में देखते हैं, किसी से भी मिलते हैं, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, कोई को देखते ही पहले क्या याद आ जाता है, अरे ये व्यक्ति ऐसे है। तो ये जो संकल्प है, इन संकल्पों का भी हमें इकोनॉमी करना है, समय की भी हमें ध्यान देना है, संकल्पों के ऊपर भी ध्यान देना है। संकल्पों की इकोनॉमी तब होती है जब हमारे अंदर श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, अच्छे विचार चलते हैं। यदि तेज विचार चलते हैं तो समझो हमारे अंदर संकल्प ऐसे वैसे चल रहे हैं, मन में विचार अलग अलग प्रकार के चल रहे हैं, भले अशुद्ध नहीं होगा परंतु व्यर्थ तो थोड़ा बहुत रहेगा, कमी कमजोरियों के संकल्प तो थोड़ा बहुत रहेगा। तो इसीलिए सदैव हमें ये अटेंशन रखना है कि कभी भी मैं किसी का अवगुण नहीं देखूं। एक सदैव हमारे हम ध्यान पर रखें कि गुणग्राही बनकर रहूं, क्योंकि गुणग्राहकता भी एक दिव्य गुणों में विशेष गुण है। जब अभी उदाहरण के लिए हम इतने हम सभी बैठे हैं, उनमें से एक एक में से एक एक गुण भी हम उठाएंगे तो कितने गुण हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, कर सकते या नहीं? हाँ, हमारे अंदर ज्यादा गुण आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? तो एक एक का भी यदि गुण देखने का हम शुरू करेंगे तो अपने आप दिव्य गुणों के हम मूर्ति बन जाएंगे, दिव्य गुणों के भंडार बन जाएंगे। तो जब हम जैसे अभी गीत में भी सुन रहे थे, जो दानी दान करता है वो कौन है? देवता है। दाता जो होता है वो देवता कहलाता है। देवताओं में दिव्य गुण जरूर भरे रहते हैं, उनके हरेक चलन वलन में दिव्यता रहती है, उनकी दृष्टि में, उनकी वृत्ति में, उनकी कृति में, उनके बोल में, हरेक बात में दिव्यता रहती है। तो ये तो हम केवल चित्र देख करके ही समझ सकते हैं। जब हम लक्ष्मी नारायण के, राधा कृष्ण के, अथवा भले त्रेता के, राम सीता के भी चित्र आदि कईयों का चित्र देखते हैं तो भी हमको कितने अच्छे लगते हैं। तो कारण क्या है? पवित्रता और दिव्य गुण उनमें भरे हुए हैं। तो दिव्य गुणों की धारणा, अभी देवताओं के चित्र देख करके सिर्फ हम धारण कर सकेंगे ऐसी बात नहीं है। तो देवताओं में कौन से दिव्य गुण है वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें बाबा अपने इस ज्ञान के द्वारा, महावाक्यों के द्वारा हमें सिखाते आ रहे हैं, उससे हमें अभी मालूम पड़ा हुआ है कि दिव्य गुणों को कैसे हमें धारण करना है। कौन कौन से दिव्य गुण हैं? तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में दिव्य गुणों को लाते 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 फिर हम वरदानी मुहूर्त बन जाते हैं। दिव्य गुण मुहूर्त माना वरदानी मुहूर्त। इसलिए पहले दानी, फिर महादानी, फिर वरदानी कहा जाता है। वरदानी केवल वरदास्त्र रख करके वरदान दे रहे हैं इसके लिए वरदानी है, ऐसी बात नहीं है। तो स्वयं उनके अंदर वो सर्व गुण, सर्व शक्तियां भरे रहनी चाहिए, क्योंकि शिव बाबा है ही सर्व गुणों के भंडार, सर्व शक्तिवान, सदैव वरदानी आत्मा शिव बाबा के साथ अपने बुद्धि का संबंध सदैव बना के रखता है। और उससे गुण तो हम धारण करते ही हैं, ग्रहण करते ही हैं, साथ साथ गुण केवल हमारे अंदर आ गए तो बड़ी बात नहीं है, परंतु गुण के साथ साथ शक्ति भी चाहिए। माना शक्ति युक्त गुण धारण करना है। तो बाबा से, शिव बाबा से हमें शक्तियों की भी किरणों को प्राप्त करना है। मुझे आत्मा के अंदर शक्तियों की किरणें भरकर जब हम बाबा के गुणों के साथ साथ देवताई दिव्य गुणों को अपनाते हैं, तभी हम वरदानी मुहूर्त बनते जाते हैं। तो इसलिए हमें वरदानी मुहूर्त बनना भी बहुत जरूरी है। केवल दानी नहीं, महादानी नहीं, वरदानी, और जो वरदानी बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं? विश्व कल्याणी जरूर बन सकते हैं, बन जाते हैं। कारण बाबा विश्व का रचयिता और वो कल्याणकारी है। हाँ, शिव बाबा, शिव अर्थात कल्याणकारी, हम सबको सुनाते हैं, मंगलकारी है, शुभकारी है। तो जब बाबा कल्याणकारी है तो हम ऐसे कल्याणकारी के संतान बच्चे, तो हमारा भी कर्तव्य है मास्टर कल्याणकारी बन करके सारे विश्व को कल्याण करना, माने विश्व की आत्माओं को दुआओं के द्वारा परिवर्तन करना। क्योंकि बाबा का संदेश तो हरेक आत्माओं को मिलनी ही है, चाहे वो त्रेता में आने वाले हैं या कलयुग में आने वाले हैं, थोड़ा बहुत प्रमाण में इनडायरेक्टली क्यों नहीं हो, टीवी के माध्यम से क्यों नहीं हो, मोबाइल के माध्यम से क्यों नहीं हो, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से क्यों नहीं हो, कोई ना कोई प्रकार से संदेश तो सबको जरूर मिलेगा ही, परंतु केवल संदेश प्राप्त करने से हम सत्य के मालिक तो नहीं बन सकते, वो तो हम सबको पता है। हम सबका लक्ष्य क्या है, भले कहां पर भी आ जावे, तो कोई भी यदि त्रेता में कोई आने चाहते क्या, राम सीता कोई बनने चाहते क्या, तो हाथ उठाएंगे कोई? यदि मैं कहूं कौन त्रेता में आने चाहते हैं, राम सीता बनने चाहते हैं, हाथ उठाओ। है कोई तैयार? है तैयार? कोई भी तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हम 2 करोड़ के अंदर, उससे भी उसके भी अंदर, 9 लाख माला के मणकों के अंदर और उससे भी अंदर 16,108 मणके माला के मणके के अंदर आने वाली आत्माएं हैं। है आप सभी आत्माएं हैं? कोई उठा रहे हाथ, कोई नहीं उठा रहे, क्या मतलब है? शायद आप सोच रहे होंगे, हम तो यहाँ पर 16,000 के ऊपर आए थे बाबा के घर में, तो हम सभी 16,000 कैसे हो जाएंगे, 16,108? क्योंकि सारे विश्व में कितने लाखों बाबा के बच्चे हैं, वो लोग भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो लोग भी तो बनने वाले हैं, ऐसे लगता होगा, परंतु नहीं। आप सभी को याद होगा, बाप दादा ने एक मुरली में ये भी कहा है कि बच्चे केवल 108 की माला के मणिकों के माला एक नहीं है, एक लड़ी नहीं है, तो उसके कई लड़ियां हैं, कई लड़ियां हैं बाबा के गले में। तो उसी प्रकार से 16,108 की मणकों की माला की भी कई लड़ियां हैं तो बाबा के गले में। तो इसीलिए हमको चिंता करने की बात नहीं है, सिर्फ हमारा कर्तव्य है बाबा के, शिव बाबा जैसे कहते वैसे पूरा पूरा बाबा के श्रीमत पर हमें कदम कदम पर, ब्रह्मा बाबा के कदम कदम पर फॉलो करते हुए आगे बढ़ना, शिव बाबा के श्रीमत पर भी चलना है हमको, और ब्रह्मा बाबा जिस प्रकार से आचरण करके गए उस प्रकार के उनके कदम पर कदम रख करके भी हमें चलना है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाप भी शिव बाबा के श्रीमत के अनुकूल ही अपने जीवन व्यतीत किए। सुबह कैसे शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार हमें अपने जीवन को बनाना, वो हमको बाबा ने वो भी अच्छी तरह से सिखा दिए हैं। सुबह अमृत वेले से लेकर के रात के बाबा के गोद में विश्राम करने तक बाबा ने हमको हरेक बात की श्रीमत सिखा दिए हैं। अमृत वेले उठना और किस प्रकार से तैयार होकर के बाबा के पास बैठना, बाबा के कमरे में अथवा सामूहिक रूप से बैठ करके योग करना और किस स्थिति में अपनी स्थिति बनाना, आज भी हमने मुरली में सुने कि बाबा ने क्या बताया, केवल हम आधा घंटा एक घंटा योग में बैठ गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कौन सी बात बाबा ने हमको ध्यान खिंचवाए, केवल आधा एक घंटे योग में बैठ गए वो नहीं, देखो मैं कितने समय एकाग्रचित्त होकर के बैठ करके बाबा को याद की। जिस स्वमान में मैं मुझे बैठना था, जिस स्थिति में मुझे बैठना था, जो लक्ष्य रख करके मैं बैठा था अथवा बैठी थी, उसी स्थिति का मैंने कितना समय अनुभव किया, ये हम कभी चेक करते हैं? नहीं। हम सुबह उठ गए, अमृत वेले खुश हो गए, फिर बाबा के कमरे में बैठ गए अथवा हाल में सामूहिक रूप से बैठ गए, तो योग कर रहे हैं, आधा घंटा हुआ, पौना घंटा हो गया, ज्यादा भी हो गया, परंतु क्या कर रहे हैं, अंदर हमारे मानसिक संकल्प क्या चल रहा है, उसके ऊपर पूरा ध्यान भी नहीं देते कभी कभी हम। तो बस पौना घंटा हो गया, योग पूरा हो गया, बस उठ गए, बहुत करके ऐसे हो जाता है। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि सुबह सुबह का समय है, अमृत वेले के समय पर बहुत करके माया मौसी ज्यादा आती है ना, तो उसको मराठी में कहते हैं साखर झूप, मीठी नींद बोलते हैं। सुबह के समय पर बहुत अच्छी सुहावना नींद आती है, क्योंकि कारण क्या है, माया भी उसी टाइम पर देखती है, मेरे बच्चे इस टाइम पर ही मिलते हैं मुझे, इजीली उनको मैं पकड़ सकता हूं, पकड़ सकती हूं, रावण माया। तो उस समय पर ही जब हम अमृत वेले योग में बैठते हैं, अचानक नींद आ जाती है, अचानक आलस्य आ जाता है, उबासी उदासी सब आ जाता है, तो हमको पता भी नहीं चलता है, योग भी पूरा हो जाता है, व्हाइट लाइट भी लग जाता है, रेड लाइट बंद हो जाता है, तभी हम जागते, अरे रे रे मेरा क्या लक्ष्य था, मैंने क्या किया। तो ऐसे योग से फिर हमारी प्राप्ति क्या होगी, इसीलिए बाबा बच्चों को बताते हैं, बच्चे योग का भी श्रीमत है, योग का भी श्रीमत है, ज्ञान का भी श्रीमत है, दिव्य गुणों का माना धारणा का भी श्रीमत है, और सेवा भी किस प्रकार से करना इसकी भी श्रीमत है। हर एक बात के लिए, चाहे तो यदि हम सभी ध्यान से मुरली सुनेंगे ना हर दिन, तो चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर बाबा मुरली चलाते हैं हर दिन। सिर्फ पॉइंट सबको ज्ञान के बारे में बाबा ने आज क्या बताए, योग के बारे में क्या बताए, तो धारणा कौन सी, धारणा की कौन सी बात थी, और सेवा के प्रति बाबा की क्या कहना, तो ये सभी हम लोग पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अच्छी तरह से हम उन बातों को सारा दिन विचार मंथन करके उस प्रकार से हम चारों सब्जेक्ट्स को चला सकते हैं, अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो इसीलिए पहली बात है, अमृत वेले के योग से लेकर के हमको श्रीमत पर चलना अति आवश्यक है, क्योंकि अमृत वेले का समय है हमारा ब्रह्मा मुहूर्त का समय। केवल उस समय पर शिव बाबा का ही वरदान नहीं, ब्रह्मा बाबा का भी हमको वरदान मिलता है, इसलिए उसको ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। केवल ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, हम सब बाबा के बच्चों के लिए वो ब्रह्मा मुहूर्त है। क्या है? ब्रह्मा मुहूर्त। ब्रह्मा बाबा के भी हमें वरदान मिलते रहते हैं, ब्रह्मा बाबा के भी आशीर्वाद मिलते रहते हैं, आशीष दुआएं मिलते रहते हैं। तो इसीलिए सुबह हम सारे दिन का फाउंडेशन को पक्का करें, तो फिर योग अमृत वेले का अच्छा हो गया, तो फिर ज्ञान के बारे में भी हम अच्छी तरह से ध्यान रख करके ज्ञान बाबा की मुरली भी अच्छी तरह सुन सकते हैं। जब ध्यान रख करके बाबा की मुरली सुनेंगे तो वो भी ये योग है बोलते बाबा। सुने हैं ना हम लोग, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान भी यदि हम बाबा की मुरली भी हम ध्यान से सुनते हैं तो ये भी तो योग में गिना जाता है। तो वैसे मुरली के ऊपर भी हमें पूरा अटेंशन चाहिए, तो एक एक शब्दों के ऊपर अटेंशन चाहिए। कारण क्या है? बाबा ने बहुत बार हम बच्चों को बताए हैं कि बच्चे हो सकता है आज की मुरली जो आप सुनेंगे तो आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात आई हो, कोई भी ऐसी समस्या आई हो, तो उसके बारे में बाबा ने कोई पॉइंट सुनाया होगा, वो आपको वो बात टच हो जाती होगी, है ना? तो वो हमारे जीवन में लागू हो जाता होगा। फिर उस प्रकार से पॉइंट्स लेकर के मैं अपने जीवन को चलाऊं तो वो समस्या खत्म हो जाती होगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे आपने पूरा मुरली नहीं सुने, माना आपको जो पॉइंट चाहिए आपके लिए वर्तमान समय जो पॉइंट्स आवश्यक थी वो आपने मिस कर दिया, तो उससे क्या होगा? तो मिस हो गया, माना मैं जिस बात को जीवन में धारण करना चाहिए वो मेरे से मिस हो गया, जिससे मेरे जीवन की समस्याएं या कोई भी ऐसी वैसी बातें जो निवारण होने का था वो रह गया। तो इसीलिए ज्ञान की बातों को भी हम थोड़ा ध्यान से सुनते हुए अपने जीवन में जो जरूरत की बातें हैं वो हर दिन एक एक पॉइंट सिर्फ ले, ज्यादा नहीं तो भी चलेगा, वो भी हम सारे दिन में वो ज्ञान की बातें मंथन करते हुए धारण करें तो भी बहुत हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हम इन ज्ञान की बातों को अपने अंदर मंथन धारण करते जाएंगे, मंथन करते जाएंगे, तभी हम दूसरों के गुण ग्रहण कर सकेंगे। यदि ज्ञान की बातें मेरे अंदर है ही नहीं तो दूसरा क्या अज्ञान की बातें रहेगी तो अवगुण ही दिखाई देगा। इसीलिए ज्ञान हमारे लिए बहुत लाभकारी है, हर दिन सत्संग करना बहुत आवश्यक है। सत्संग का भक्ति मार्ग में भी बड़ा महत्व है, तो जो सत्संग करते हैं उनका 21 कुल का उद्धार होता है बोलते हैं, कुलों तक उद्धार हो जाता है। उनका जो वाइब्रेशन है, उनके जीवन की धारणाएं हैं, उनके परिवार को भी लाभ होता है, प्राप्त होता है, इसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। परंतु वास्तव में उनका संग मिलता है, उनका वाइब्रेशन मिलता है, उससे उनके जीवन में भी आज नहीं तो कल परिवर्तन आ सकता है, उस दृष्टिकोण से बताते हैं। तो वैसे हम हर दिन जो सत्संग करते हैं ये सबसे बड़ा सबसे महान सत्संग है। क्यों? क्योंकि हमारे बाबा, प्यारे बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है, वो सत्य है, शिव कल्याणकारी है और सुंदर यानी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप जागति ज्योत है। उसके साथ हम हर दिन संबंध रखेंगे तो क्या होगा? हर दिन का संबंध हमें भी मास्टर ज्ञान सूर्य बना देगा, मास्टर सर्वशक्तिवान बना देगा, मास्टर कल्याणकारी बना देगा और वरदानी मुहूर्त बना देगा। तो इसीलिए हमें दान करने के साथ साथ महादानी भी बनना है और महादानी बनते बनते हम लोग धीरे धीरे क्या बन जाएंगे? मनसा सेवा के द्वारा, वाणी की सेवा के द्वारा और कर्मणा की सेवा के द्वारा फिर हम वरदानी बनते जाएंगे। क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं, कर्तव्य करते हैं, हमारे जो दृष्टि वृत्ति वाणी कृति वगैरह जो दूसरे देखते हैं वो देवता ही चलन वलन रहता है, दिव्य गुणयुक्त रहता है। जैसे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के बारे में हम सुनते हैं, बाबा के हरेक एक एक अंग एक एक इंद्रियाएं दिव्य गुणों के झलक फलक महसूस कराता था। तो अभी हम उनके संतान हैं, ब्रह्मा को वंशावली, तो हम ब्राह्मण बच्चों का भी यही कर्तव्य है कि हमें भी क्या बनना है? महादानी, वरदानी और विश्व कल्याणकारी कल्याणी बनना है। तो जब हम बाबा को फॉलो करेंगे तभी हम बाबा की चाहना क्या है, बाबा शिव बाबा हम बच्चों को क्या जिम्मेवारी दिए हैं, बच्चे आप सभी को एक एक अंगुली का सहारा मुझे देना है, तो एक एक अंगुली के सहारा बाबा को देना अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, तो तभी हम क्या बन जाएंगे? विश्व कल्याणकारी। जितना हमारे अंदर हरेक के प्रति कल्याण की भावना रहेगी, जितना हम कल्याण की भावना रखेंगे उतना हम स्वयं भी अपने आप का भी कल्याण करते जाएंगे और अन्य हमारे साथी सहयोगी परिसर वालों को भी, उनका भी, उन आत्माओं का भी कल्याण करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली विश्व कल्याण बन जाएंगे। तो ऐसे हम विशेष रूप से इन बातों को ध्यान में रखते हुए दानी, महादानी, वरदानी और विश्व कल्याणी बनना है, तभी हम सारी विश्व के आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति जल्दी से जल्दी, समय नाजुक है, समय पूरा होने से पहले अनुभव करा सकेंगे, दिला सकेंगे। तो ये कर्तव्य हमको करना है, तभी हमारे द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। तो बाप दादा के हम बच्चों के प्रति क्या इच्छा है, हम बाप दादा को सारे विश्व के सामने प्रत्यक्ष कराएं, ये हमारा आद्य कर्तव्य है। ये कार्य हम सब बाबा के सच्चे सच्चे संगमयुगी कल्याणकारी बच्चों को करना ही है। तो अभी एक शास्त्रों की बात भी मुझे बीच में इस बात पर याद आ रही है। कहा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माँ की शक्ति हनुमान की भक्ति, श्री राम की प्रवृत्ति और श्री कृष्ण की युक्ति, महावीर और बुद्ध की वैराग्य वृत्ति, ये पांचों बातें हमारे जीवन में यदि आ जावे, उनकी भी बातें हम लोग समझ करके, उनकी भी इन बातों को समझकर अपने अंदर धारण कर लेंगे तो सचमुच हम वरदानी मुहूर्त जरूर बन जाएंगे और सारी विश्व का कल्याण करते हुए हम विश्व कल्याणकारी बन ही जाएंगे। तो केवल हम ही नहीं, हम दूसरों को भी बनाएंगे। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? खुद का परिवर्तन, तभी दूसरों का परिवर्तन हम कर सकेंगे। तो हम यहाँ किस लिए आए हैं? बाबा के घर में हम खुद अपने आप को परिवर्तन करके विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी और विश्व के सामने बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले बनने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ऐसे हम सब यहाँ से ये दृढ़ संकल्प करके जाना है। तो मैं केवल विश्वासी नहीं, दृढ़ संकल्प करती हूँ हम और आप सभी इस प्रकार से वरदानी मुहूर्त, महादानी मुहूर्त, विश्व कल्याणी मुहूर्त बन करके यहाँ से जाएंगे। तो आप सभी शांत चित्त हो करके इन बातों को, बाबा की बताई हुई महावाक्य है, उनको हम सुने हैं, समझे हैं, उस अनुसार जरूर हम चलेंगे, अपनी जीवन जरूर बनाएंगे। इसलिए आप सबको बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद है, आभार है, थैंक्स।
रहे।